आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी से मुतालिक दूसरी एशिया बहरुल काहल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के तमाम बुजुर्गों के लिए सेहत कवरेज की मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जोधपुर में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन आईडेक्स 24 का इफ्तिताह करेंगे। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए भी पर्चे दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड का दो रोजा सरकारी दौरा करेंगे। और खेलों में, दिल्ली में मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने सुब्रतो कप बैन अल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर बॉयज का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शहरी हवाबाजी से मुतालिक दूसरी एशिया बहरुल काहल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तमाम मेंबर मुल्कों के जरिए दिल्ली एलामिये को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली एलामिया खित्ते के हवाबाजी के सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक बसीरत अफरोज रोड मैप है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली में दूसरी एशिया बहरुल काहल वजारती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। जनाब नायडू को शहरी हवाबाजी से मुतालिक एशिया बहरुल काहल वजारती कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब किया गया। उन्होंने साल 2035 तक 3 अरब 50 करोड़ सालाना मुसाफिरों को संभालने के लिए एशिया बहरुल काहल हवाबाजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मकसद साल 2025 तक हवाबाजी के शोबे में अफरादी कुव्वत में खवातीन की शराकतदारी को बढ़ाकर 25% करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
ये कॉन्फ्रेंस और दिल्ली एलानी को अपनाने का अमल एशिया बहरुल काहिल के शहरी हवाबाजी सेक्टर में हिफाजत, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। ये कॉन्फ्रेंस इस खित्ते के मुल्कों के दरमियान मौजूद बाहमी इश्तराक व तआवुन के जज्बे को बखूबी उजागर करती है। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाली हवाबाजी मार्केट है और ये घरेलू प्रवास के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। पिछली दहाई के दौरान भारत में तैयारों की तादाद 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई है। इसी तरह हवाई अड्डों की तादाद भी 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जैसी सरकारी पहल ने इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी में नुमाया तौर पर इजाफा किया है। यहां तक कि दूर दराज के इलाकों को भी हवाबाजी के नेटवर्क में जोड़ने को यकीनी बनाया गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
मरकजी काबीना ने 2 साल के दौरान 2,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मौसम के लिए मजीद बेहतर तौर पर तैयार और आबोहवा के लिहाज से स्मार्ट भारत बनाने के लिए मिशन मौसम की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सहाफियों से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अर्जियाती साइंसेज की वजारत के जरिए लागू किया जाने वाला यह मिशन भारत में मौसम और आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक साइंस, तहकीक और खिदमात को फरोग देगा। यह मिशन मौसम और आबोहवा की इंतहाई दुरुस्त और बरवक्त मालूमात फराहम करने में मदद करेगा। इस मिशन में आला तरीन सेंसर्स, आला कारकर्दगी के हामिल सुपर कंप्यूटर्स के साथ साथ अगले सिलसिले के रेडार्स और सैटेलाइट निजाम के अलावा बरवक्त आदाद शुमार फराहम करने के लिए जीआईएस पर मबनी खुदकार फैसला साज माविन निजाम की तरक्की शामिल है। इस मिशन से ज़राअत, कुदरती आफात के बंदोबस्त, दिफा, माहौलियात, हवाबाजी, आबी वसायल, बिजली, सयाहत, जहाजरानी, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और सेहत जैसे मुतादिद शोबों को बराए रास्त फायदा होगा। इसके अलावा इससे शहरी मनसूबाबंदी, सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट और माहौलियात की निगरानी जैसे शोबों में फैसला साजी में इजाफा होगा। मरकजी काबीना ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल की उम्र से ज्यादा के तमाम बुजुर्गों को उनकी आमदनी से खतः नजर सेहत कवरेज फराहम करने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद सहाफियों को इत्तला फराहम करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने उजागर किया कि इस योजना के तहत मुल्क में तकरीबन 4.5 करोड़ कुंभों का अहाता किया जाएगा और तकरीबन 6 करोड़ बुजुर्ग शहरियों को शामिल किया जाएगा।
सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 ईयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है।
मरकजी काबीना ने माली साल 2024-25 से माली साल 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 पर अमलावरी के देही तरक्यात के महकमे की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मजमुई तखमीना 70,125 करोड़ रुपए होगा। नई दिल्ली में जराय इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के तहत 62,500 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी जिससे कनेक्टिविटी से महरूम 25,000 मकामात को जोड़ा जा सकेगा। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि इस काम से 40 करोड़ अफरादी दिन का रोजगार पैदा होगा। इस स्कीम के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए सड़कों का तायुन होगा।
जितने भी विलेजेस और हैबिटेशन जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन हैं, उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन ईयरमार्क 70,125 करोड़ रुपीज।
मरकजी काबीना ने पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम को मंजूरी दी है जिसका मकसद तकरीबन 3,435 करोड़ रुपये से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज पीटीएएस के जरिए 80 बसों की खरीदारी, ई बसों की इसी खरीदारी और उन्हें चलाना शामिल है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम से माली साल 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मखसूस फंड के जरिए ऑपरेटरों को बरवक्त अदायगी से मुतालिक तशवीश को हल किया जा सकेगा और ये सर्विस शुरू होने की तारीख से 12 साल की मुद्दत के लिए ई बसेस चलाने में मदद मिलेगी। इस पहल का मकसद प्राइवेट सेक्टर की शराकत की हौसला अफजाई करके ई बसों को अपनाने की सहूलत फराहम करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जोधपुर में वाक एयर फोर्स स्टेशन पर जारी तरंग शक्ति मशक का आज मुशाहिदा करेंगे। जनाब सिंह डिफेंस एविएशन एक्सपो का इफ्तिताह भी करेंगे। 12 से 14 सितंबर तक मुनक्किद होने वाली आईडेक्स में इस सनत की बड़ी पैमाने पर शिरकत होगी जिसमें कई तरह की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज पेश की जाएंगी। ये प्रोग्राम दोस्त बैरूनी ममालिक और भारत के लोगों को एक मौका फराहम करेगा कि वो डीपीएसयू डीआरडीओ प्राइवेट सनतों और बेहतरीन स्टार्टअप्स समेत भारतीय हवाबाजी की सनत के शुरका के साथ साथ मुशाहिदा तजुर्बा और तबादला ख्याल कर सकेंगे। आईडेक्स का मकसद मुल्की हुनरमंदी और भारतीय फिजाई सनत के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का फैसला साजों और तरंग शक्ति 2024 में शिरकत करने वाली आलमी फिजाई फोर्सेज के सामने मुजाहरा करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
वजीर दिफा भारत के 3 आर्मी सरबराहान और गैर मुल्की फिजाइया के सरबराहान आज मुनक़िद होने वाले एयर शो का मुशाहिदा करेंगे। इस एयर शो में सूर्य किरण, सारंग, मुल्क में ही तैयार लड़ाका तैयारा तेजस और सुखोई-30 अपनी खूबियों का मुजाहरा करेंगे। तरंग शक्ति मश्क भारतीय फिजाइया के जरिए मुनक़िद की जाने वाली सबसे बड़ी कसीर मुल्की फिजाई मश्क है। इस मश्क में 7 अहम ममालिक अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और यूनान शिरकत कर रहे हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। 90 सीटों वाली हरियाणा असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सोनीपत से दिवेंद्र गौतम को जबकि गुड़गांव से निशांत आनंद को उम्मीदवारी दी है। वहीं अंबाला छावनी से राज कौर गिल को और करनाल सीट से सुनील बेंदल को मैदान में उतारा गया है। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए 3 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने रोहताश जांगड़ा को सिरसा से जबकि कुंवर सिंह यादव को महेंद्रगढ़ से उम्मीदवारी दी है। वहीं सतीश फागना को फरीदाबाद एनआईटी सीट से मैदान में उतारा गया है। इन नामों को बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया। وہیں کانگریس نے بھی ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 40 امیدواروں پر مشتمل فہرست جاری کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ہردل عزیز سرکار کو منتخب کرنے کے لیے اسمبلی انتخابات کا عمل، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا، 10 سال کی مدت کے بعد جاری ہے۔ پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے تحت جنوبی کشمیر کے 4 ضلعوں کے 16 اسمبلی حلقوں میں 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان 16 اسمبلی حلقوں میں بیج بہرا اہم حلقوں میں سے ایک ہے۔ بیج بہرا اسمبلی حلقے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پیش ہے سری نگر سے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
18 ستمبر کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے 24 اسمبلی حلقوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کی طرف سے چلائی جا رہی چناؤ مہم شدومت سے جاری ہے۔ ان اسمبلی حلقوں میں سے 16 نشستیں کشمیر صوبے کے اننت ناگ، کلگام، شوپیاں اور پلوامہ ضلعوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سٹار کمپینرز چناؤ والے علاقوں میں چناؤ ریلیوں اور روڈ شوز میں مصروف عمل ہیں، اور وہ رائے دہندگان کو امیدواروں کی جانب راغب کرنے میں جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے انتخابات کے دوران 23,27,000 رائے دہندگان ووٹ دینے کے اہل ہوں گے، جن میں 5,66,000 نوجوان ووٹر بھی شامل ہیں۔ اننت ناگ ضلع کے ساتھ ساتھ پورے کشمیر صوبے میں کلیدی اہمیت رکھنے والے بجبہاڑا حلقے میں پی ڈی پی کی التجا مکتی، بی جے پی کے صوفی یوسف اور نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد کے امیدوار بشیر احمد ویری کے درمیان سخت تکونی مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ حلقے میں 1,02,081 ووٹر چناؤ لڑنے والے امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جن میں 50,728 مرد اور 51,353 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ چناؤ کمیشن نے حلقے میں تمام تر بنیادی سہولیات سے لیس 125 پولنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ دیگر انتظامات کے ساتھ ساتھ حلقے میں سلامتی انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے، تاکہ احسن، پرامن اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اردو خبرنامے کے لیے شری نگر سے میں سنیل کول۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سوئٹزرلینڈ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وزیر خارجہ کا 3 ملکوں سعودی عرب، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے دورے کا یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے۔ وزیر خارجہ جنیوا میں ان بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں اور نمائندوں سے ملاقات کریں گے، جن کے ساتھ بھارت سرگرمی سے مصروف عمل ہے۔ اقوام متحدہ کے کئی اداروں اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر جنیوا میں واقع ہیں۔ وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کی قریبی ساجداری کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز سے برلن میں ملاقات کی اور انہیں وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک خواہشات پیش کیں۔ فٹ بال میں منی پور کے ٹی جی انگلش اسکول نے 63rd سبرتو کپ انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا جونیئر بوائز کا خطاب جیت لیا ہے۔ فائنل میں ٹی جی انگلش اسکول نے میگھالیہ کے منگچگین کرسچن ہائر سیکنڈری اسکول کو سڈن ڈیتھ میں 3-4 سے شکست دی۔ فائنل میچ نئی دلی کے بی آر امبیڈکر اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس سے پہلے مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں 1-1 کی برابری پر رہیں، جس کے بعد میچ سڈن ڈیتھ میں چلا گیا۔ پچھلے 44 سالوں میں یہ تیسرا موقع ہے جب منی پور کی کسی ٹیم نے ٹرافی جیتی ہے۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے سیمی کون انڈیا 2024 کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم مودی کے خطاب کو اپنی 6 سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں 1.5 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری، کئی پروجیکٹ پائپ لائن میں۔ اخبار پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ سرحدی علاقوں میں ترقی سے ہی درپیش مسائل کا حل ممکن۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جبرن تبدیل مذہب کے معاملے میں لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت کے ذریعے 16 افراد کو سزا دیے جانے سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار انقلاب نے جموں کشمیر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شہری ہوا بازی سے متعلق دوسری ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 70 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے تمام بزرگوں کے لیے صحت کوریج کو منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج جودھپور میں انڈیا ڈیفنس ایویشن ایکسپوزیشن IDEX 24 کا افتتاح کریں گے۔ ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج شام ختم ہو جائے گا۔ جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے بھی پرچے داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سوئٹزرلینڈ کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔